समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
मनुष्य को कभी भी अवसरों की कमी का रोना नहीं रोना चाहिए। हर पल आपके लिए अवसर लेकर आता है। आपकी क्षमता और प्रतिभा पर निर्भर करता है कि आप इस पल को कैसे जीते हैं। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आज सवेरे कार्यक्रम में एक नई सुबह के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं, लेकर देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के अंक से आप, मैं हूँ मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेनु कटारिया। रेनु, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। डियर लिसनर्स, वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन वी शेयर द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 19th ऑफ नवम्बर। सो लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस मुकेश।
जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में रियो द जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में भुखमरी और गरीबी उन्मूलन के लिए वैश्विक गठबंधन शुरू करने के ब्राजील की प्रशंसा की है। श्री मोदी ने कहा कि ये वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और कमजोर समुदायों के उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने ब्राजील के इस प्रयास में भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन भी दिया। प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, नॉर्वे, पुर्तगाल और इंडोनेशिया के नेताओं से मुलाकात कर आपसी संबंधों को बेहतर बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के साथ व्यापक सामरिक भागीदारी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात कर पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक के सफल आयोजन पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष ऊर्जा, यांत्रिक बुद्धिमत्ता, जनसंपर्क और भावी क्षेत्र में मिलकर काम करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मिलोनी के साथ रक्षा, व्यापार, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत इटली संयुक्त सामरिक कार्ययोजना 2025-2029 का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर से भी मुलाकात कर नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और समुद्री अर्थव्यवस्था में निवेश तथा नवाचार और अनुसंधान बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात कर वाणिज्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा निर्माण के क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मोदी ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनिग्रो के साथ आर्थिक संबंधों, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, रक्षा और जनसंपर्क पर चर्चा की।
Indian Space Research Organization or ISRO has successfully launched its most sophisticated communication satellite GSAT-20 on board SpaceX's Falcon 9 rocket from Cape Canaveral in USA last night. Speaking during the launch, ISRO Chairman S. Somnath said, "It was a very successful launch. The satellite is healthy and solar panels have been deployed. The satellite will provide broadband services in remote areas and in-flight internet in passenger aircraft. It will remain in operation for 14 years. This is for the first time that ISRO has launched a satellite on a SpaceX rocket through its commercial arm, New Space India Limited or NSIL. Weighing 4,700 kg, GSAT-20 is one of India's heaviest communication satellites. The GSAT-20 is too heavy for India's own rocket LVM-3, popularly known as Bahubali, to carry, so SpaceX was chosen for the launch. India had till now relied on French launch service air provider Arian Space for such heavy satellite launches, but the company does not have any operational rockets at present, and the only reliable option India had was to go with SpaceX. SpaceX's heavy lifter Falcon 9 rocket can launch payloads of 8,300 kg or 8.3 tons to geostationary transfer orbit.
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य में कल एक ही चरण में 288 सीटों पर मतदान होगा। राज्य में कुल 4,136 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। उधर झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस चरण में 12 जिलों के 38 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा।
Union Home Minister Amit Shah will inaugurate the Golden Jubilee edition of the All India Police Science Congress at Rashtriya Raksha University in Gandhinagar today. Chief Minister Bhupendra Patel will also participate in the event. Mr. Shah, who is on a two-day visit to Gujarat, will also attend several key events today. This year's All India Police Science Congress is a milestone event that will discuss the future of Indian policing, global best practices and technology. Led reforms. The two-day conference will dwell upon issues pertaining to the use of forensics and technology in new criminal law, the use of AI in the criminal justice system, the role of police in disaster risk reduction, and the future of blockchain technology in policing. The conference will also address the challenges in tracing money trail in cyber fraud and strategies to tackle radicalization in prisons. On the sidelines of the conference, a police science exhibition is also being organized. In the morning, Mr. Shah will inaugurate the Gandhinagar Postal Stamp Exhibition Filavista at Dandi Kutir in Gandhinagar.
गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार दूसरे दिन मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए कल नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 50 अतिरिक्त कंपनियां भेज रहा है।
K. Sanjay Murthy has been appointed as the Comptroller and Auditor General of India. Mr. Murthy is currently serving as the Secretary of the Department of Higher Education in the Education Ministry. He will replace Girish Chandra Murmu, who was appointed as the CAG in August 2020.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाला मामले में राज्य लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष तमन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि सोनवानी ने अपने पुत्र को डिप्टी कलेक्टर, भतीजे को डिप्टी एसपी, भांजी को श्रम अधिकारी, पुत्र वधु को डिप्टी कलेक्टर और भाई की वधु को जिला आबकारी अधिकारी नियुक्त करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग किया था।
Ports, Shipping and Waterways Minister Sarbanand Sonowal has said that India is targeting a port handling capacity of 10,000 million metric tons per annum by 2047. Speaking at the maiden Sagar Manthan, the Great Oceans Dialogue in New Delhi, Mr. Sonowal said that India aims to revolutionize its maritime sector with an investment worth 80 lakh crore rupees to enhance port capacity, shipping, shipbuilding, inland waterways. Highlighting the Amrit Kal Maritime Vision 2047, the minister said, India is preparing to build future ships that run on clean fuel. Talking to media, Mr. Sonowal said, Sagar Manthan aspires to stir global dialogue and knowledge sharing for sustainable development of blue economy. He added that delegates and speakers from over 60 nations are bringing in their rich knowledge and vast expertise. He highlighted that India aims to be the leading maritime nation in the world across all the verticals, including port operation, cargo handling, shipbuilding and legislative reforms.
और श्रोताओ, आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है मेट्रो न्यूज का, तो सबसे पहले रेनू चेन्नई के क्या समाचार हैं बताइए।
जी बिल्कुल बताती हूँ। The 16th Finance Commission members will be visiting the desalination plant at Nimmeli near Chennai. They will also visit the export-oriented unit and state-sponsored industrial unit located at Sri Perumbudur. They are scheduled to visit Madurai tomorrow by chartered flight and leave for Rameswaram. They will also visit the Ramanathiswamy Temple at Rameswaram. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin met the Finance Commission members at the State Secretariat on Monday. He urged the Commission to increase the state share of central taxes to 50%, citing financial strain due to the current GST regime. More news. Students of MCC are planning to launch lake musicals to entertain walkers and senior citizens in and around Tambaram. The programs will include light music, and public and senior citizens will also be encouraged to sing at the event. The director of extension programs of the college said that the traditional art forms, theatre and games will also be held along with simple games for senior citizens and children. मूविंग ऑन टू यू मुकेश, क्या है आपके पास समाचार दिल्ली से?
नहीं, दिल्ली से पहले हम मुंबई की बात करेंगे और मुंबई के समाचारों में निर्वाचन आयोग ने नागरिकों को चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सी विजिल मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दर्ज करने की सुविधा प्रदान की है। इस ऐप पर शिकायत प्राप्त होने के 100 मिनट के भीतर ही निवारण किया जाता है। ठाणे जिला के मतदाताओं को 20 नवंबर को मतदान के दिन मतदान केंद्र पर प्राप्त होने वाली सुविधाओं में पीने का पानी, दिव्यांगों के लिए रैंप और पर्याप्त बैठने की व्यवस्था शामिल है। ठाणे के चुनाव अधिकारी अशोक श्रृंगारी ने बताया कि दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर ब्रेल की सुविधा दी गई है। और पालघर के चुनाव अधिकारी गोविंद बोड़के ने कल बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पालघर जिले में अब तक 22 करोड़ रुपए की नकदी, शराब और अन्य सामग्री जब्त की गई है।
Moving on to Bengaluru, Mukesh, the Karnataka Home Minister Dr. G. Parmeshwar has assured tough measures to curb the menace of contraband drugs sold as chocolates and tablets in the state. Speaking to media persons in Mysuru, the minister said that a war is waged against narcotics. He informed that 70 to 80 foreigners caught selling illicit drugs were expelled from the state. He disclosed that investigation is going on against medical shops suspected of selling the narcotics as tablets, and if found true, such shops will lose their licenses. Speaking about drug trafficking, Parmeshwar said that ports, airports and interstate transport modes are used for drug trafficking, and recently 1.5 ton ganja was seized in Vishakhapatnam recently. On increasing substance abuse in the state, the minister said that ganja is being grown in small quantities in the state and measures are taken to destroy them. And another message, menace is hydro ganja, which will also be curbed within iron hand.
और रुख करते हैं कोलकाता का। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में आलू की खेती के लिए आवश्यक खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए कई कदम उठा रही है। राज्य में किसान आलू की खेती के लिए अपने खेत तैयार कर रहे हैं। बाजार में जरूरी एनपीके खाद की कमी है। जिला प्रशासन को सलाह दी गई है कि वे इस बात की जांच करें कि किसानों को समय पर खाद मिल रही है या नहीं। ब्लॉक कृषि अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक भी निर्धारित की गई है।
एंड मूविंग ऑन टू हैदराबाद मेट्रो, Telangana State Government has established the Telangana Artificial Intelligence or AI Advisory Council, and it is studying the best practices in AI policies for a strong policy framework. IT Minister D. Sridhar Babu has informed this at the AI in Healthcare Summit Road to BioAsia 2025 held in Hyderabad yesterday. Addressing the summit, the minister highlighted the government's emphasis on AI's transformative potential for industries, the environment and society. The minister also said education and innovation can broadly impact the economy, especially in areas of comparative advantage, driving economic growth and productivity. He noted the scope of AI in healthcare is vast, ranging from drug discovery and diagnostics to enhancing patient care and safety. Highlighting the AI Advisory Council, the minister emphasized its role in promoting inclusive, ethical and responsible AI growth aligned with sustainable development goals. He assured the government's support to help companies and announced training programs on AI. Sridhar Babu also noted partnerships with companies to train highly skilled AI engineers for MSMEs and announced plans for an AI-focused university.
और अब राजधानी दिल्ली के समाचार जान लेते हैं। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण कल सवेरे 8 बजे से लागू कर दिया गया। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए इस चरण के अंतर्गत कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। कल शाम वायु गुणवत्ता सूचकांक 495 दर्ज किया गया था। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कल द्वारका में स्थापित किए गए एंटी स्मॉग सिस्टम का निरीक्षण किया। श्री सक्सेना ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बिजली के खंभों पर एंटी स्मॉग सिस्टम लगाए हैं, इससे करीब 20% प्रदूषण कम हुआ है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कल सभी संबंधित विभागों को ग्रेफ 4 के दिशा निर्देशों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र सरकार से उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए आपातकालीन कदम उठाने की मांग की है। इस बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर प्रदूषण की रोकथाम में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के कारण स्थिति डरावनी और चिंताजनक है। कला, संस्कृति और विरासत का अद्भुत संगम सरस आजीविका मेला दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के अंतर्गत इस मेले में दर्शकों को हस्तशिल्प, वास्तुकला और विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां देखने को मिल रही हैं। सरस आजीविका मेला ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आयोजित किया है। और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कैलाश गहलोत ने कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भाजपा मुख्यालय में श्री गहलोत को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कैलाश गहलोत ने बताया कि वो भाजपा में अपनी मर्जी से शामिल हुए हैं और इसके लिए उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित हैं। रेनू, देश दुनिया के समाचार हो गए, अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार भी हो गए और महानगरों के भी समाचार हो गए।
खेल के रहते
क्या रहता है? जी बिल्कुल, तो खेल की ही बात करते हैं और खेल जगत की हलचल की जानकारी लेकर स्टूडियो में पहुंच चुके हैं हमारे सहयोगी निखिल कुमार। तो निखिल, बताएंगे आज की खेल खबरों की शुरुआत कहां से कर रहे हैं?
मुकेश, सबसे पहले आज हम बात करेंगे महिला हॉकी की। तो बिहार के राजगीर में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले आज से खेले जाएंगे। पहला मैच चीन और मलेशिया के बीच होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में भारत और जापान आमने सामने होंगे। उधर हॉकी इंडिया ने पुरुष जूनियर एशिया कप के लिए 20 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम का कप्तान आमिर अली को बनाया गया है, जबकि रोहित उप कप्तान होंगे और ये टूर्नामेंट 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक ओमान के मस्कत में आयोजित होगा। अब बैडमिंटन की हम बात करें तो चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शेंजेन में खेली जाएगी। इसमें भारत की ओर से पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और महिला वर्ग में पीवी सिंधु की चुनौती होगी। लक्ष्य टूर्नामेंट में पहले दौर में मलेशिया की 7वीं वरीयता प्राप्त ली जी जिया से खेलेंगे, तो वहीं सिंधु पहले दौर में थाईलैंड की सुपनिता केट थोंग के साथ में खेलेंगे। अब हम क्रिकेट की बात कर लें तो भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा 22 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में शुरू हो रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच से बाहर रहेंगे। उनकी जगह पर उपकप्तान जसप्रीत बुमराह टीम की कमान संभालेंगे और सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल भी पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। अब हम शतरंज का जिक्र करें तो कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ब्लिट्ज खिताब जीतकर अपना डबल पूरा किया। कार्लसन ने अंतिम राउंड में विदित गुजराती को हराकर लगातार 3 जीत दर्ज की और 13 अंकों के साथ इस खिताब पर अपना कब्जा किया। भारतीय खिलाड़ियों में से एरेगेसी 10.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे और आर प्रज्ञानानंद 9.5 अंकों के साथ चौथे और विदित गुजराती 9 अंकों के साथ शीर्ष 5 में रहे। चलते चलते ये भी बता दें कि ट्यूरिन में इटली के जैनिक सिनर ने वर्ष का 8वां खिताब जीत लिया है। उन्होंने एटीपी फाइनल्स में टेलर फ्रिड्स को 6-4, 6-4 से पराजित किया। तो मुकेश, फिलहाल आज सवेरे में खेल खबरों में इतना ही।
आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे, मुकेश कुमार और रेनू कटारिया के साथ। और अब कार्यक्रम में वक्त हुआ है मौसम का हाल जानने का। तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज के मौसम की बात करते हैं। दिल्ली में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और मुंबई का रुख करें तो मुंबई में सवेरे कोहरा छाया रहेगा और बाद में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
एंड चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 27 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 32 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग और मिस्ट इन द मॉर्निंग एंड पार्टली क्लाउडी स्काई लेटर। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 20 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 28 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद हेज। द टेम्परेचर विल हैव between a minimum of 17 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज 19 नवंबर है। आज ही के दिन वर्ष 1895 में फ्रेडरिक ई ब्लेसडेल ने पेंसिल का पेटेंट कराया था। और पेंसिल जो है काफी महत्वपूर्ण साबित हुई है क्योंकि उससे बहुत कुछ लिखा जाता है।
हमें आज भी पेंसिल से लिखना ज्यादा पसंद है।
1933 की बात करें तो आज ही के दिन यूरोपीय देश स्पेन में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला था। 1952 में आज ही के दिन स्पेन यूनेस्को का सदस्य बना था।
In 1975, on this day, one of the greatest movies ever, One Flew Over the Cuckoo's Nest, was released. The film was based on the book of the same name by Ken Kesey and starred Jack Nicholson and Louis Fletcher. In 1982, the 9th Asian Games started in Delhi, Mukesh, on this day, that is 19th of November. And in 1994, aaj ke din, Aishwarya Rai was selected Miss World at the age of 21 in the beauty contest held at the 44 convention at Sun City, South Africa.
Bilkul, 1995 ki baat karein, to aaj ke din, भारतीय भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। 1997 में आज ही के दिन कल्पना चावला अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी।
इन 1998 ऑन दिस डे अटल बिहारी वाजपेयी अप्रूव्स फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अ न्यू हाई पावर हब टू गिव पॉलिसी डायरेक्शंस टू सेफगार्ड द कंट्रीज सिक्योरिटी।
और 1998 में ही आज के दिन कैम्ब्रिज स्थित इंटरनेशनल बायोग्राफिकल सेंटर ने भरतनाट्यम की प्रख्यात नृत्यांगना कोमला वर्धन को वर्ष 1998 का वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना।
एंड ऑन दिस डे दैट इज 19th ऑफ नवंबर इन द ईयर 2000 डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट गेट्स द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट फॉर द ईयर 1999।
और वर्ष 2008 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख मोहम्मद अल बरदेरी को वर्ष 2008 के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी।
जी।
और अब वक्त हुआ है आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है उन महान व्यक्तियों को याद करने का। इस क्रम में सबसे पहले याद कर रहे हैं प्रसिद्ध उपन्यासकारों में से एक वाचस्पति पाठक को। आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्होंने कागज की टोपी नामक कहानी से विशेष लोकप्रियता पाई थी। वाचस्पति पाठक अपने समय के महत्वपूर्ण कथाकार तो रहे हैं, उल्लेखनीय संपादक भी रहे। उन्होंने अपनी पहचान साहित्यिक आंदोलन के सक्रिय योद्धा के रूप में बनाई थी। और आज ही संथाली भाषा के विद्वान शिक्षाविद और पद्मश्री से सम्मानित दिगंबर हांसदा की पुण्यतिथि है। ट्राइबल और उनकी भाषा के उत्थान के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वे केंद्र सरकार के ट्राइबल अनुसंधान संस्थान और साहित्य अकादमी के सदस्य भी रहे थे। वर्ष 2018 में उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और भारत के जाने माने समाज सुधारक और भूदान यज्ञ नामक आंदोलन के संस्थापक और विनोबा भावे के अनुयायी रमेश भाई की आज पुण्यतिथि है। वो एक समाज सुधारक के रूप में रमेश भाई ने अच्छा काम किया था और ये सर्वोदय आश्रम तड़ियावां के संस्थापक थे। उनकी संगठन कुशलता और संवेदनशील प्रशासन ने उन्हें बहुत अधिक लोकप्रिय बनाया था। और अंत में इस क्रम में भारतीय शास्त्रीय वादक कलाकार थे आर के बीजापुरी। आज उनकी पुण्यतिथि है। वो संगीत वाद्य हारमोनियम के प्रसिद्ध वादक थे। उन्हें पंडित राम कल्लो बीजापुर और पंडित आर के बीजापुरे या बीजापुर मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। और संगीत गुरु के रूप में आर के बीजापुरे ने 1938 में श्री राम संगीत महाविद्यालय शुरू किया था।
जी। और चलते हैं हम आज के दिन के बर्थडेज या बर्थ एनिवर्सरीज की तरफ मुकेश। सो टुडे वी आर पेइंग ट्रिब्यूट्स टू लक्ष्मीबाई निवालकर द रानी ऑफ झांसी बॉर्न मणिकर्णिका तांबे हु वाज द महारानी कॉन्सॉर्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ झांसी इन द मराठा एम्पायर फ्रॉम 1843 टू 1853 बाय मैरिज टू महाराजा गंगाधर राव निवालकर। शी वॉज वन ऑफ द लीडिंग फिगर of the Indian Rebellion of 1857 who became a national hero and symbol of resistance to the British rule in India for Indian nationalist.
बिल्कुल रेनू। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनके ऊपर जो कविता लिखी है वो क्यों ना सुन ली जाए।
बिल्कुल।
सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुट्टी तानी थी
बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी
घुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी
दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी
चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी
बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
बिल्कुल। और आज ही जयंती है प्रसिद्ध धार्मिक और समाज सुधारक जो ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक थे केशव चंद्र सेन की। वे बड़े तीव्र बुद्धि तार्किक और विद्वान युवक थे। उन्होंने उत्साहपूर्वक समाज को संगठित करना आरंभ किया था और इस कारण वे शीघ्र ही आचार्य पद पर नियुक्त हो गए थे। केशव चंद्र सेन ने ही आर समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को सलाह दी थी कि वे सत्यार्थ प्रकाश की रचना करें। और केशव चंद्र सेन और स्वामी जी के विचार आपस में मिलते नहीं थे लेकिन जिस कारण ब्रह्म समाज का विभाजन और आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में ये जो है विभाजन हो गया था।
एंड मूविंग ऑन टू सलील चौधरी, जिन्हें हम बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं आज, हु वॉज एन इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर, सॉन्ग राइटर, लिरिसिस्ट, राइटर एंड पोएट, हु प्रीडोमिनेंटली कंपोज्ड फॉर बंगाली, हिंदी एंड मलयालम फिल्म्स. ही कंपोज्ड म्यूजिक फॉर फिल्म्स इन 13 लैंग्वेजेस एंड दिस इंक्लूड्स ओवर 75 हिंदी फिल्म्स, 41 बंगाली फिल्म्स, 27 मलयालम फिल्म्स एंड अ फ्यू मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नडा, गुजराती, उड़िया एंड असमीज फिल्म्स.
बिल्कुल रेणु, उनके संगीतबद्ध गीत आज भी फिजा के कण कण में गूंजते से महसूस होते हैं. उन्होंने प्रमुख रूप से बंगाली, हिंदी और मलयालम फिल्मों के लिए संगीत दिया था, तो क्यों ना उनकी जो लिखे गए गीत हैं उनकी हमने एक मेडली बनाई है, वो सुने.
बिल्कुल.
इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा.
इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा. रजनी
तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गमते, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने.
और आज जन्मदिन है अपने जमाने के विश्व प्रसिद्ध फ्री स्टाइल पहलवान और प्रसिद्ध अभिनेता दारा सिंह की. और दारा सिंह जो है खेल और मनोरंजन की दुनिया में समान रूप से उन्होंने एक नाम कमाया है और अपने काम का लोहा मनवाया. यही वजह थी कि उन्हें अभिनेता और पहलवान दोनों के रूप में जाना जाता है. और उन्होंने रामायण जो धारावाहिक था उसमें हनुमान की बहुत ही प्रभावशाली भूमिका निभाई थी.
And we can never forget that, yes.
जी बिल्कुल, तो सुनते हैं ये डायलॉग.
अपने शरीर को स्वस्थ रखना और उसकी रक्षा करना प्राणी का पहला धर्म है. इसी धर्म के अनुसार जब शरीर अत्यंत भूखा हो और खाने का पदार्थ सामने हो तो उसे खा लेने में धर्म और न्याय की दृष्टि से कोई दोष नहीं. मैं 100 योजन समुद्र लांग कर आया था. इस परिश्रम से मैं बहुत थक गया था और भूख भी लगी थी, इसीलिए अशोक वाटिका के फलों पर अपना अधिकार समझ कर खा गया.
और उन्होंने रुस्तम ए हिंद में फिल्म में काम किया था, तो उसका गाना भी सुनते हैं.
जी बिल्कुल.
मेरे पहलू में आके बैठो खुदा के वास्ते, इश्क को फिर गले लगा.
और आज जन्मदिन है भारतीय हिंदी सिनेमा की ख्याति प्राप्त अभिनेत्री जीना तमान की. और वो एक अभिनेत्री के साथ एक मॉडल भी थी और उन्होंने 1970 से 80 के दशक में कई फिल्में की हैं, तो उनकी फिल्म का एक गाना.
जी.
सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम.
Today is the birthday of Sushmita Sen, who is an Indian actress and beauty pageant title holder, who was crowned Miss Universe in 1994, thus becoming the first Indian woman to win the title. And Sen has predominantly worked in Hindi films and is a recipient of a Filmfare Award and a Filmfare OTT Award. But yahan pe pehle ek gana sun lete hain.
सुष्मिता सेन का जन्म 19 नवंबर 1975 को हैदराबाद में हुआ था. वायुसेना के सेवानिवृत्त विंग कमांडर सुबीर सेन और ज्वेलरी डिजाइनर शोभा सेन की वो बेटी सुष्मिता सेन को फिल्म जगत की सौम्य और सहज अभिनेत्रियों में माना जाता है, तो क्यों ना उनकी एक और फिल्म का गाना सुना जाए.
बिल्कुल.
घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज का आज सवेरे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाए, तो अनुमति दें मुकेश कुमार और रेणु कटारिया को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। लेकिन आप सुनते रहें आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। नमस्कार,
नमस्कार।